जिस स्थान पर जिस धाम में सुध गोस्वामी भागवत कथा सुनाए, किसी ने मुझे पूछा कि क्या इसी स्थान पर बिल्कुल यही कथा हुई थी सुध गोस्वामी की? सुध गोस्वामी का आसन व्यास गद्दी कई पीछे कई मैंने एक बार देखी है। कुछ 25 वर्ष पूर्व मैं आया था नैमिषारण्य में शिव प्रभुपाद के ग्रंथों का वितरण करने हेतु, श्रीमद् भागवत का वितरण करने, गीता का वितरण करने के लिए हम लोग कानपुर लखनऊ होते हुए सीतापुर और फिर यहाँ भी आए थे। तो मुझे कुछ स्मरण है यार कहीं पीछे वो स्थान है, वो आसन है जहाँ पर जहाँ सुध गोस्वामी बैठे थे। यहाँ नहीं बैठे बिल्कुल, और कोई यही आसन था क्या? लेकिन ये वही क्षेत्र है ये वही परिसर है जहां भागवत कथा के लिए बहुत बड़ी संख्या में विश्वभर के ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे, जिनकी संख्या थी 88,000। कितने थे? 88,000 ऋषि मुनि बैठे थे। तो यहाँ भी बैठे होंगे, आप जहाँ बैठे हो और मैं भी जहाँ बैठा हूँ, यहाँ ऋषि मुनि बैठे थे इतना तो जरूर कह सकते हैं। सुध गोस्वामी कहीं भी बैठे होंगे तो 88,000 जब ऋषि मुनि बैठे तो ये भवन तो उस समय था ही नहीं, बंद था। निमिष अरण्य, हम लोग सुन रहे हैं ना इसमें, इसमें अरण्य है जैसे दंडकारण्य, दंडक अरण्य, तो ये निमिष अरण्य, अरण्य ये शरण्य का कोई संबंध नहीं, तो कोई शरण्य शरण शरणागति का भी स्थान है लेकिन ये है वैसे अरण्य। हम लोग तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, चित्रकूट में रामलीला का ही प्रधानता, जहाँ भी जाते रहे ओ यहाँ ये हुआ वहाँ पर ये हुआ, या भरत राम मिलन हुआ वहाँ पर लक्ष्मण जी निवास करते थे, ओ यहाँ राम ने स्नान किया, ये राम ओ ये सीता घाट है, ये स्फटिक शिला है या सीता और राम बैठे थे और फिर एक आ गया कौवा। तो हुआ तो लीला स्थली वो धाम हमें राम के लीला का स्मरण दिलाता है, राम की लीला की प्रधानता। तो फिर प्रयागराज आए तो प्रयाग संगम नदियों के मिलन का स्थान या यज्ञ का भी स्थान, ओ यह दशाश्वमेध घाट, यह दश अश्वमेध अश्वमेध यज्ञ हुए और वैसे प्रयाग में अधिक प्रधानता तो गंगा जमुना और सरस्वती का ही प्राधान्य और वहाँ का स्नान। और फिर हम कहाँ गए? फिर आगे बढ़े हम लोग वाराणसी गए तो वरुणा और असी के साथ साथ गंगा की प्रधानता, गंगा स्नान और शिव जी वहाँ, उनकी पुरी, काशी विश्वनाथ, कई बोल बाला सर्वत्र। उनकी भावना, फिर आप गए, मैं नहीं गया। गया आप गए तो वहां तो विष्णु भगवान के चरणों का आपने दर्शन किया, किया कि नहीं? गंगा तो हमें, गंगा तो भगवान के चरणों से आती है, तो वाराणसी में तो गंगा ही देखी जो भगवान के चरणों से निकलती है। लेकिन फिर जब गया गए तो वहां भगवान के चरण ही हमने देखे। गंगा तो भगवान का चरण अमृत है, तो गया में भगवान के चरण का दर्शन। एक समय भगवान ने चरण रखे वहां और चिन्ह वहां छोड़े, और फिर जब हम यहां आते हैं तो यह किसकी प्रधानता है? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। यहां के वातावरण में, यहां का परिवेश तो हमें श्रीमद् भागवत का स्मरण दिलाता है। पिंड देना है तो वहां जाइए, राम की लीला के यहाँ, गंगा के स्नान के लिए वहां, और भागवत कथा का श्रवण करना है तो फिर नैमिषारण्य आना होगा। शुकताल भी है, कुछ स्थान है विशेष भागवत कथा के संबंधित। पांच हजार वर्ष पूर्व हम तो कुछ कल्पना ही कर सकते हैं कैसे होगा ये अरण्य। कलयुग का प्रारंभ था, अब हम कह रहे हो 5000 वर्ष पूर्व, 5000 ईयर्स। लेकिन ये जब भागवत की कथा यहाँ हुई सुत गोस्वामी की, तो भगवान श्री कृष्ण तो अभी थे वृंदावन में, मथुरा और द्वारिका में, कुरुक्षेत्र गए। तो जैसे कौन थे, 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु थे, तो 500 वर्ष पूर्व, तो कुछ 500 ज्यादा नहीं है। तो जब कथा हो रही थी तो कालावधि के दृष्टि से देखा जाए तो कुछ ही वर्ष, कुछ ही 100 वर्ष पूर्व भगवान पृथ्वी पर थे। लेकिन जिस दिन भगवान अपने धाम लौटे, यदा मुकुंदो भगवान क्षाम त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दीनात् कलिरायातः सर्वसाधन बाधकः। तो जिस दिन भगवान, अरे जिस दिन भगवान अपने धाम लौटे, स्वपदं गतः, क्षाम त्यक्त्वा, इस पृथ्वी को त्यक्त्वा छोड़ा, स्वपदं गतः अपने धाम लौटे, तद दीना, उस दिन से कलयुग का प्रारंभ हुआ। तब दीनात खरीद आया था। और कैसा कली सर्व साधन बाधक, सारी साधना में बाधा या विघ्न डालने वाला ये युग कलयुग। साधना से सिद्धि है, साधना से भगवत प्राप्ति है, भगवत प्राप्ति सिद्धि है या लक्ष्य है, उसके लिए साधन चाहिए, साधना से सिद्धि। लेकिन साधना में ही बाधा, तो फिर सिद्धि और उस लक्ष्य तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। तो ये कलयुग बाधा डालता है, डाल रहा है। सर्व साधन बाधा, तो फिर प्रभु ने वैसे व्यवस्था तो की, अधुना अर्क पुराण उदिता कलौ नष्ट दृशाम ईशाम। कलयुग प्रारंभ हुआ तो अंधेरा छा गया सर्वत्र, लोग अंधे हो गए। कलौ सत्व हरम पुंसाम, कलयुग क्या करता है, सत्व हरम सात्विकता जो भी अच्छाई है, मराठी में चांगुलपना कहते, चांगुलपना उसको छीन लेता है। कि कलौ सत्व हरम, सत्व सात्विकता, तो तमगुण रजगुण और फिर सबसे अच्छा गुण तो सत्वगुण है। तो सत्वगुण हर लिया तो फिर बचता है कुछ रजगुण और काफी सारा तमगुण प्रधानता हो जाती है। तो कलौ नष्ट दृशाम ईशाम, कलयुग हमारे दृष्टि को नष्ट करता है। ऐसे स्थिति में करुणामय, करुणा सिंधु, दीन बंधु, दीनानाथ श्री कृष्ण, उन्होंने व्यवस्था की ताकि इस संसार को प्रकाश प्राप्त हो या आंखें ही प्राप्त हो। तो पुराण अर्क उदित, इसी भागवतम में, भागवतम हम लेके बैठे हैं, पुराण अर्क उदित, जैसे सूर्य का प्रकाश प्रातः काल में होता है तो फिर हमको दिखाई देता है, हम लोग देख सकते हैं। हमारी बस आ रही थी नंबर टू, नंबर टू, तो रात भर में कहीं हिल भी नहीं सके, उस बस की आंखें नष्ट हो गई, हेडलाइट्स ऑफ, तो वही रुक गए। फिर जब सूर्योदय हुआ तो फिर आगे बढ़े, स्टार्टेड द इंजन, फिर आगे बढ़ धीरे धीरे धीरे, फिर अभी पहुंच गए। तो हुआ पुराण अर्क उदिता, इस पुराण को, भागवत पुराण को अर्क मतलब सूर्य, पुराण अर्क उदिता, इस कलयुग के अंधेर नगरी में या जहां सर्वत्र अंधेरा, अंधेरे का साम्राज्य फैला हुआ था, तो भगवान ने श्रीमद् भागवत ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की रचना की, प्रकाशित किया, ताकि इस कलयुग के जीव देख सकते हैं अपने को भी और भगवान को भी और एक दूसरों को भी हम देख सकते हैं। भागवत के मदद बिना हम लोग परिवार के सदस्यों को भी नहीं देख सकते। ओ अभी अभी तो था, ये रोने लगा, चला गया। अरे कहा जिसको तुम अपना कहते थे वो तो सामने है, गोद में है या बेड पर है या इंटेंस केयर यूनिट में, अब भी सामने तो है, चला कहाँ गया, कौन चला गया, कौन चला गया, आत्मा चली गई। ये ज्ञान है, थोड़े जाने अनजाने हम लोग स्वीकार तो करते हैं कि ये शरीर हमारा सही या हमारा परिचय नहीं है, इसके अंदर निवास करने वाला आत्मा और फिर आत्मा के साथ निवास करने वाले परमात्मा भी है, इसका परिचय भागवत देगा हमें, गीता भागवत। करीति श्रवण अखंड चिंतन बिठो बाचे, जो भी चिंतन करेगा, अखंड चिंतन भगवान का चिंतन होगा, जो गीता भागवत का श्रवण करता है, गीता भागवत करीति श्रवण अखंड चिंतन विठोबाचे, विठोबाचे चिंतन, श्री कृष्ण का चिंतन, श्री राम का चिंतन, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का चिंतन, तब प्रारंभ होगा जब हम गीता भागवत का श्रवण करेंगे। तो मैं कौन हूं, मेरे परिवार के सदस्य सचमुच है कौन, कभी देखा है आपके अपने परिवार के सदस्यों को, उनकी तस्वीर तो देखे, फोटो देखा है, ये मेरे पति है, ये पुत्र है, ये बेटा है, ये सारी पहचान होती है, सारा फैमिली ट्री, फैमिली एल्बम सब होता है, मैरिज एल्बम भी। तो जब बच्चा देखता है अपने अपने माँ बाप का, पेरेंट्स का मैरिज फोटोग्राफ्स, तो पूछा मम्मी मम्मी मैं नहीं हूं इस फोटोग्राफ में, आप समझे उसके माँ बाप का, पिता माता का जब मैरिज हुआ तो उसका इस फोटोग्राफ में मैं क्यों नहीं, वो कहीं ना कहीं था, फिर उसने रूप धारण किया, शरीर लिया और सामने उपस्थित हुआ, तो फिर उसी शरीर को ही हम मानते हैं, हाँ इस ये मेरे पुत्र की या पुत्री की पहचान है, लेकिन आत्मा को तो कभी पहचाना नहीं हमने। और फिर पुत्र और पुत्री का खूब ख्याल तो किया, लेकिन पहचाना ही नहीं कौन है पुत्र और पुत्री, तो कैसे क्या ख्याल किया। कैसी मदद की उनकी, कुछ नहीं किया। हमारे पुत्र पुत्री आत्मा है, उसको पहचाना ही नहीं। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अंग्रेजी में टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ना ख्याल करो, तुझी काळजी घ्या, काळजी घ्या। तो ये श्रीमद् भागवत, भगवत गीता भागवत हमें परिचय दिलाता है, अपना भी, अपने परिवार के सदस्यों का, औरों का भी, और भगवान का। तो श्रीमद् भागवत जब प्रकट हुआ तो भगवान जब नहीं रहे तो 30 साल बीत गए। यहाँ वैसे भागवत महात्म्य में प्रश्न ही पूछा गया है, कब कब यहाँ जो कथा हुई, इसके पहले कौन कौन सी कथा और कहाँ कहाँ हुई, ऐसे प्रश्न पूछे गए। तो 3 कथा, वैसे ही यहां कथा होने के पहले 3 कथाएं भागवत की हुई थी। पहली कथा हुई शुक्ताल, शुक्रताल, शुकदेव गोस्वामी सुनाए हस्तिनापुर के बाहर गंगा के तट पर, वो कथा सुनाई सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को। जब कलियुग 30 वर्ष का बच्चा ही था, मतलब भगवान को अपने धाम लौट के कितने वर्ष बीत चुके थे, यस वेरी गुड। फिर दूसरी कथा, गोकर्ण ने अपने भ्राता अपने भाई धुंधकारी को सुनाई। सुखदेव गोस्वामी के कथा के 200 वर्ष बाद दूसरी कथा हुई, गोकर्ण ने जो सुनाई वो दक्षिण भारत में हुई थी, कर्नाटक प्रदेश में जहाँ तक मुझे स्मरण है। फिर तीसरी कथा हुई हरिद्वार में, पुनः गंगा के तट पर। पहली कथा गंगा के तट पर हस्तिनापुर के पास, तीसरी कथा पुनः गंगा के तट पर लेकिन हरिद्वार में, आनंद आनंद वन, आनंद वन स्थान। ये कथा के कथाकार रहे चार कुमार, सनक सनातन आदि जो चतुष कुमार है, ब्रह्मा के मानस पुत्र ये भाई है, इन्होंने ये कथा सुनाई। भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य, और नारद मुनि भी वहाँ थे, और फिर ये तो मुख्य श्रोता रहे, कई असंख्य श्रोता वहाँ एकत्रित हुए थे, सारे ब्रह्मांड भर के, सारे विश्व भर के, केवल ऋषि मुनि और मनुष्य ही नहीं, ऐसा वर्णन इस महात्मा में सुनाया है। संसार भर के तीर्थ भी वहां आ गए, पुष्कर तीर्थ वहां आ गया, प्रयागराज वहां आ गया, आप जो भी नाम जानते हो, जिस तीर्थ के आप नाम जानते हो, वे सारे तीर्थ उस कथा में। तीर्थ भी एक वो मूर्तिमान बनते हैं, अपना रूप उनका है, रूप धारण करके वे कथा श्रवण के लिए आ गए। गंगा जमुना सरस्वती कावेरी नर्मदा सिंधु और गोदावरी, ये नदियां भी वह अपने अपने रूप धारण करके, उनके रूप है, उनके यान भी वाहन भी है, वो रूप धारण करके उस कथा में आ गए। इतना ही नहीं, अलग अलग शास्त्र भी अपने अपने रूप धारण करके श्रीमद् भागवत के श्रवण के लिए, श्रीमद् भागवत के सेवा के लिए वहां पधारे। जहां भागवत की कथा होती है वहां क्या बताएगा, सारा संसार वहां पहुंच जाता है। सुत गोस्वामी उस हरिद्वार कथा में भी बैठे थे, तो उन्होंने अपना अनुभव आंखों देखा वर्णन। यहाँ के ऋषि मुनियों को बता रहे थे, सुत गोस्वामी यहाँ के कथा का हो गए ना, तीन कथा हो गई। अच्छा, तीसरी कथा, दूसरी कथा के बाद 30 वर्ष बाद, क्लियर। पहली कथा 30 वर्ष कलयुग प्रारंभ होने, भगवान अपने धाम लौटे 30 वर्ष बाद, ये दूसरी कथा उस समय से 200 वर्ष बीतने के उपरांत, फिर तीसरी कथा दूसरी कथा के 30 वर्ष बाद, इस प्रकार। तो उसके उपरांत यह कथा नैमिषारण्य में कथा हुई। कली का प्रभाव तो बड़ा भयानक, और ऋषि मुनि जो हुआ सभी का हित चाहते ही है। सर्वभूत हिते रतः, ऋषि मुनियों की ये पहचान है। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीड़ पराई जानी रे, जौरों की पीड़ा को जो जानते हैं, वैष्णव जन तो तेने कहिए, उनको कहिए वैष्णव। पर दुख दुखी, प्रभुपाद के संबंध में पर दुख दुखी, उनका सब ठीक ठाक चल रहा था वृंदावन में, लेकिन अमेरिका के लिए प्रस्थान किया पर्यटक बन के नहीं। और प्रभुपाद साथ में क्या ले गए, श्रीमद् भागवत ले गए थे। प्रभुपाद बैठे बोट में, जलदूत बोट में, तो कलकत्ता में बैठे, फिर बंगाल, बे ऑफ बंगाल, उपसागर बंगाल का, वहाँ से कन्याकुमारी गए, फिर केरल की ओर आए, कालीकत, नाम सुना है। तो वहाँ प्रभुपाद के श्रीमद् भागवत के ग्रंथों के बक्स क्रेट्स वहाँ लोड हुए थे। तो प्रभुपाद भागवत धर्म का संदेश फैलाने श्रीमद् भागवत लेके गए, और वे स्वयं भी वैसे व्यक्ति भागवत थे ही। भागवत के दो प्रकार, एक ग्रंथ भागवत, ग्रंथ भागवत, और दूसरा व्यक्ति भागवत, पर्सन भागवत। तो प्रभुपाद स्वयं ही भागवत। तो पर दुख दुखी, तो संसार के कष्टों, कष्ट मिटाने हेतु, कुछ हल्का बोझ करने हेतु संत महात्मा भ्रमण करते हैं। तो हुआ, तो कली जो प्रारंभ हुआ कलयुग का, तो ऋषि मुनि बड़े चिंतित थे, कैसे बोझ घटाया जाए, कैसे तमोगुण रजगुण का प्राधान्य का दमन किया जाए। तो एक विशेष स्थान पर वे यज्ञ करना चाहते थे, या संत समागम करना चाहते थे एकत्रित होके। तो ब्रह्मा के पास गए वो जिज्ञासा करने, या पूछने की कहां हम लोग इस ब्रह्मांड में यज्ञ कर सकते हैं, एकत्रित होकर संत समागम कर सकते हैं। और जिस स्थान पर वो यज्ञ करने से उसका लाभ सारे ब्रह्मांड को, विश्व को होगा, ऐसा कोई स्थान की आप सूचना हमें दे सकते हो। तो ब्रह्मा जी ने कुछ एड्रेस वगैरह तो नहीं दिया, लेकिन ब्रह्मा जी ने एक चक्र को निर्माण किया, बड़ा सूक्ष्म ही सा चक्र था, पहिया। तो उन्होंने कहा कि ये पहिया जहां भी जहां गिर जाएगा वहां पर आप यज्ञ करना। तो पहिया जाने लगा, और जहां जहां पहिया गया उसके पीछे 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 ऋषि मुनि आ रहे थे, यहां गिरता है वहां गिरता है, क्यों नहीं गिर रहा, कब गिरेगा, बड़े उत्कंठित थे। तो ब्रह्मलोक से निकला वो, ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हो पहिया, एक चक्र, भ्रमण करते 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 यहां पर वो गिरा। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे थे, राधा रमन महाराज बता रहे थे कि जो हुआ जब पहिया होता है, चक्र होता है, तो उसका एक तो मध्य में एक्सल होता है, एक्सल तो यही शब्द से अधिक परिचित हो, मध्य में एक्सल होता है, और फिर उसकी मान बाइसिकल का पहिया हम सोचिए, और उसकी रिम होती है, टायर होता है, यस, और फिर रिम से लेकर एक्सल तक जो लोहे के स्पोक्स होते हैं, स्पोक्स, इस स्पोक्स को निमिष, निमिष ऐसा नाम आता है। तो पहिया आके उसके जो ये स्पोक्स थे जीर्ण शीर्ण जहां हुए, और जहां गिरा वो पहिया, वो निमिष से नैमिष होता है संस्कृत में, विधि से वैधि होता है, ऐसे कई शब्द है, तो निमिष से नैमिष होता है, नैमिषारण्य, नैमिष अरण्य। तो वो स्थान पहिया जहां गिरा, वो चक्र जहां गिरा, तो यहां पर उन्होंने 1000 वर्ष यज्ञ करने हेतु, हम लोग भी आए यहाँ, हम तो 3.5 दिवस, पूरे 4 भी नहीं, फिर आगे हमारा प्रस्थान होगा। एक ऋषि मुनि जब यहाँ आए थे तो बस 1000 वर्ष यहाँ रहेंगे, खूब यज्ञ करेंगे, ध्यान धारणा, संत समागम होगा, इस उद्देश्य से वे यहाँ आए थे। और उनको उनको चिंता तो अपने की तो चिंता तो होती नहीं, आत्मा रामस्य मुनयः, मुनिगण तो आत्मा राम होते हैं, प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं, यदृचा लाभ संतुष्टो, उनको किस बात की चिंता, उनको तो चिंता वैसे औरों की होती है, संसार की होती है। तो यहां यज्ञ प्रारंभ हुआ और फिर यहीं पर उसी सत्र में श्रीमद् भागवत की कथा हुई।
नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिम् कथा अमृत रसा स्वाद कुशला शौनको ब्रवीत। श्रीमद् भागवत महात्म्य, जिस भागवत महात्म्य का प्रारंभ ही है, नैमिषे मतलब नैमिषारण्य में सुत गोस्वामी को दिया एक विशेष आसन, जब सूतम आसीनम, सुत गोस्वामी को आसन पर जब बिठाए, और कैसे कैसे सुत गोस्वामी महामतिम, कैसे थे सुत गोस्वामी महामती, जिनकी मति कैसी महामती, बुद्धिमान महामतिम, अभिवाद्य तो उनको नमस्कार करते हुए, या नमस्कार करने वाले शौनक मुनि थे, जो शौनक मुनि 88,000 उपस्थित ऋषि मुनि मुनियों की ओर से उन्होंने अभिवादन किया, नमस्कार किया, और शौनको अब्रवीत, शौनक मुनि ने कहा, कुछ पूछा। सुत गोस्वामी जब आसन पर विराजमान है, जहाँ यहाँ कई पास में वो आसन, तो वहाँ पर बैठे महामति सुत गोस्वामी को नमस्कार करते हुए शौनक मुनि बोले। और फिर शौनक मुनि जी की भी कुछ विशेषताएं यहाँ कही गई है। कैसे शौनक मुनि? कथा अमृत रसास्वाद कुशलः, कुशल थे वे शौनक मुनि, जो बड़े कुशल थे, एक्सपर्ट निपुण जो थे। किसमें कुशल थे? कथा अमृत रस आस्वाद कुशलः, भगवान की कथा का अमृत और फिर उसको रस भी कहिए, या अमृत रस और इसका आस्वादन करने में वे कुशल थे। तो कुशलता तो कई प्रकार की, संसार में एक्सपर्टीज तो कई प्रकार की होती है, और इनकी कुशलता देखिए, इनका परिचय कैसे दिया जा रहा है। कथा अमृत आस्वादन में कुशल शौनक मुनि ने पूछा सुत गोस्वामी से। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा, तो थोड़ी सी स्तुति गान शौनक मुनि स्तुति कर रहे हैं। और कोई झूठ मूठ की तो वो लोग तो, ये झूठ मूठ तो अभी आ गया, वो लोग तो उनके दिमाग में ऐसा झूठ मूठ का विचार ही नहीं आता था, बस भगवान में तल्लीन। और विचारों के लिए समय है ही कहा उनके पास। तो वह दूसरे शब्दों में चमचागिरी वगैरह नहीं जानते थे, आज तो प्रसिद्ध है मस्का पहले लगाते हैं लोग, बाद में कुछ प्रस्ताव रखेंगे, कुछ हस्ताक्षर करवाएंगे, कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। तो जैसे है वैसी उनके जैसे गुण हैं, उन गुणों का वर्णन अलग से मिर्च मसाला की आवश्यकता थी नहीं। अज्ञान अध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा, हम तो हुआ ये कलयुग प्रारंभ हो चुका है, या अंधेरा छा गया है, अज्ञान फैल रहा है, यह अज्ञान को ही हम लोग ज्ञान समझ रहे हैं। इस कलयुग में 100 बार या कई बार झूठ बात कहते 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 झूठ बात ही क्या लगती है, वो सच हो गया, सच का पता ही नहीं चलता, यह कलयुग पता चलने ही नहीं देता। तो अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा, आपके पास जो ज्ञान है, ज्ञान है हे सुत गोस्वामी जी, उस ज्ञान के ज्योति का जो प्रकाश है, कितना प्रकाश है? कोटि सूर्य सम प्रभा, मानो मन कोटि कोटि सूर्य एक ही साथ उदित जब होंगे, उदय जब होगा, तो कितना सारा प्रकाश। तो आपके पास जो ज्ञान है उसका इतना सारा प्रकाश है, तो आप आसानी से उस ज्ञान की मदद से इस संसार के अज्ञान ध्वांत विध्वंस अज्ञान का नाश करने वाले, करने वाला ज्ञान के स्रोत आप हो। सुत आख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सुत गोस्वामी, आख्या ही कृपया कहिए, कहिए सुत आख्या ही कथा सारम, कथा का सार, कथा का सार। यह सागर को क्या कीजिए आप, थोड़ा गागर में भर के हमें दीजिए, आपके पास तो ज्ञान का भंडार बड़ा सागर ही है, तो कुछ बूंदे तो हमें हमारी ओर छिटकाइए, आपके पास तो सिंधु है, सिंधु में से कुछ बिंदु हमें दीजिए, कथा का सार ही हमें। कथा सारम, कैसा कथा सार? मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों के लिए क्या होगा? वो एक रसायन होगा, अमृत होगा, मधुर वो कथा सार हम श्रवण के लिए। मैं अकेला ही नहीं, देखिए आप देख सकते हो कितने सारे, असंख्य असंख्य उनकी संख्या है, 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं श्रवण के लिए। तो सुनाइए, कथा सारम मम कर्ण रसायनम। यह घोरे कलो प्रायो जीवश्चासुरताम गतः क्लेशान्तश्यतश्चैव शोधने किं परायणम्। यह घोरे कलौ, इस घोर भयानक कलयुग में जीव, जीव मतलब मनुष्य, आसुरताम गतः, आसुरता को प्राप्त हुआ है, जीव मतलब मनुष्य आसुर बन रहे हैं, आसुरता को प्राप्त हो रहे हैं, न जाने क्या क्या कार्य कर रहे हैं, शराबी पी रहे हैं जो खराब है, और जब शराब पिएंगे तो फिर दिमाग मति तो और भ्रष्ट होगी, नष्ट होगी। कुछ थोड़ी कलयुग के जीव कोई महामति तो है नहीं, अल्पमति तो है, और शराब पीने के बाद वो अल्पमति भी शून्यमति हो जाती है। शराब का हरी हरी जिक्र, इसीलिए आज जब हम आ रहे थे तो रास्ते में हम रुके प्रसाद, नाश्ता प्रसाद के लिए कहीं, तो आम का बगीचा, बगीचे में हम रुके, तो रखवाली करने वाला भी आया पास में, तो भले आदमी थे बहुत, उन्हें प्रसाद दिया, वो बैठ के हमारे साथ प्रसाद भी ले रहे थे। इतने में दूसरा एक बालक इस दूरी पर आके खड़ा था, उसको भी हमने बुलाया, थाली भर भर के प्रसाद, उसको भी थाली भर के प्रसाद मिला, तो बैठ के नहीं खाना चाहता था तो ले गया, शायद उसकी माँ कहीं पर थी। तो हम जब प्रस्थान कर रहे थे तो वो बालक दौड़ के आया और कहता है, स्वामी जी स्वामी जी, आपने तो हमें प्रसाद दिया लेकिन आशीर्वाद नहीं दिया। तो राधारमन महाराज और हम थे, तो ने पूछा, बालक कैसा आशीर्वाद, क्या चाह रहे हो तुम, क्या मनोकामना है? तो इस बालक ने कहा, मेरे पिताजी खूब शराब पीते हैं। आप आशीर्वाद दो हमें और हमारे परिवार को ताकि हमारे पिताजी की शराब छूट जाए, यही आशीर्वाद। हम गदगद हो गए जब इस बालक ने हमारे पीछे दौड़ के आया था, स्वामी जी आपने प्रसाद तो दिया लेकिन आशीर्वाद नहीं दिया। इस बालक ने भी अनुभव किया होगा कितना सारा कष्ट पिताजी के कारण। आसुरताम गतः जीवस्य आसुरताम गतः, जिस आसुरता के कारण क्लेश आक्रांतस्य, इस आसुरता के कारण लोगों को क्लेश और इससे लोग आक्रांत विविध प्रकार के कष्ट भोगते हैं। तो तस्यैव शोधने किं परायणम्, तो शौनक मुनि पूछ रहे कि ऐसी कुछ विधि आप कहिए ताकि कलियुग के जीव जो आसुरता को प्राप्त हो रहे हैं जिसके कारण उनको क्लेश कष्ट हो रहा है, विविध प्रकार के ताप त्रास, तो उसे मुक्त होने का कोई उपाय आप सुनाइए। ये बात यहीं पर कही। श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः, पावनानां च पावनम्, कृष्ण प्राप्तिकरम शश्वत साधनम तद वद अधुना। तो जो सबसे अधिक कल्याणकारी बात, श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः, परम कल्याण की कोई बात, पावनानां च पावनम् और अति पावन पवित्र करने वाली बात, जो साधन भी हो, शाश्वत साधन हो, किसका साधन, कृष्ण प्राप्ति करम, कृष्ण प्राप्ति भी कर दे हमें, और सबसे अधिक कल्याणकारी भी हो, पवित्र भी बात हो, ऐसी कोई बात वद आप कहिए हे सुत गोस्वामी जी। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। और वे स्पष्ट कर रहे हैं शौनक मुनि के, हमें ऐसा कोई चिंतामणि या कोई पारसमणि या कोई मंत्र कोई युक्ति नहीं चाहिए जिसकी मदद से हमें इस संसार का कोई सुख प्राप्त हो। पारसमणि जिसके स्पर्श मात्र से क्या होता है, लोहा सोना बन जाए, जिसको भी स्पर्श करे वो सोना बन जाए, पारसमणि नहीं। नहीं, ऐसा कोई चिंतामणि या पारसमणि हमें नहीं चाहिए। सुरद्रु स्वर्ग संपदम, सुरद्रु या ऐसा कोई कल्प वृक्ष हमें नहीं चाहिए जिस कल्प वृक्ष से वांछा कल्पतरु भ्यश्च, वांछा कल्पतरु हमारी हर इच्छा की पूर्ति करना करने वाला ऐसा कोई हमें वृक्ष भी नहीं चाहिए। स्वर्ग संपदम जिसकी मदद से हमें कोई स्वर्ग सुख प्राप्त, नहीं नहीं ऐसी कोई हमारी वांछा इच्छा नहीं है। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम, बस हमें तो गुरु को प्रसन्न करना है, जिस गुरु की प्रसन्नता से फिर प्राप्ति होती है वैकुंठम, वैकुंठ की प्राप्ति हो। योगी दुर्लभम, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है, योगियों के लिए, योगियों के भी कई प्रकार हैं। भक्ति योगी के लिए सुलभ है, लेकिन और योगियों के लिए वो दुर्लभ है। तो योगी दुर्लभ, और योगियों के लिए दुर्लभ कर्म योगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी इत्यादि इत्यादि योगियों के लिए तो भगवान दुर्लभ है, भगवान का धाम वैकुंठ दुर्लभ है, भक्तों के लिए सुलभ है। तो वो वैकुंठ प्राप्ति का मार्ग जो गुरु की प्रसन्नता से संभव होता है, तो ऐसा हमें मार्गदर्शन कीजिए ताकि गुरु को प्रसन्न करते हुए हम कृष्ण को प्राप्त करेंगे, वैकुंठ को वैकुंठ की प्राप्ति हमें हो। सूत उवाच, मतलब सूत उवाच मतलब सूत गोस्वामी ने कहा, उवाच मतलब कहा, याद रख सकते हो कोई एक शब्द याद रखिए, तो जीवन भर जहां जा उवाच आएगा तो आप झट से समझ सकते हो क्या क्या कहा जा रहा है। किसी ने कहा श्री भगवान उवाच, मतलब भगवान ने कहा, श्री अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, इस प्रकार सुत उवाच, सुत गोस्वामी ने कहा। अब क्या कहा, यहीं पर कहा, और वो कहे हुए वचन यहीं पर कई होंगे अब भी। कि शब्द तो समाप्त नहीं होते, और ये शब्द तो अलौकिक शब्द है, शब्द परब्रह्म, ये शब्द तो भागवत ही है, सुत गोस्वामी के शब्द, शुकदेव गोस्वामी के शब्द, ये शाश्वत शब्द है। और इन शब्दों से ही, शब्दों को वाक, वाणी या वाक कहते हैं, वाक, वांगमय, अब मराठी में खूब चलता है वांगमय, वांगमय कहते हैं, वांगमय, मय मतलब तन्मय, मय मय इससे पूर्ण, उससे पूर्ण, आनंदमय, जहां भी मतलब सर्वत्र आनंद ही आनंदमय। और कौन सा शब्द है, चिन्मय, चिन्मयी, चित, चित से पूर्ण, ऐसे मय। तो यह क्या, वांगमय, वाक, वाक, वाक्य, वाक, वाणी, वाणीमय, वांगमय। तो श्रीमद् भागवतम वांगमय मूर्ति है भगवान की, श्रीमद् भागवत एक रूप है भगवान का, लेकिन कैसा है, वांगमय मूर्ति है। तो भगवान की वांगमय मूर्ति तो शाश्वत है, तो यहां पर इस नैमिषारण्य में प्रकट हुई सुत गोस्वामी ने प्रकट की वो वांगमय मूर्ति यहां पर होनी चाहिए शाश्वत। शास्त्रज्ञ भी कुछ इस संबंध में उनके भी प्रयोग चल रहे हैं, या वो सोचते कि भगवान, तो गीता के संबंध में भगवान ने गीता का उपदेश सुनाया, तो गीता का उपदेश कहीं ना कहीं आकाश में, वायुमंडल में कहीं ना कहीं होना चाहिए, तो चलो हम क्या करते हैं, उसको पुनः थोड़ा टैप करते हैं, उसको उसको संग्रहित करते हैं, एकत्रित करते हैं, ऐसा कुछ विचार आ रहे हैं उनके मन में, कुछ सोच रहे इस प्रकार। तो जब भी उनको यश मिलेगा तो वो टेप बनाएंगे, उसकी बिक्री होगी, आप खरीदोगे, हाँ, श्री भगवान उवाच, फिर भगवान ने जो कहा वैसा ही होगा जैसे अब भी है, गीता के रूप में भगवान ने जो कहा तो वाणी आकाश में है, फिर ग्रंथ के रूप में है। तो सूत उवाच, प्रीति ही शौनक चित्ते ते अतो वच्मि विचार्य च सर्वसिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। हे शौनक जी, प्रीति शौनक चित्ते ते, तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है। जिस जैसे तुम जिज्ञासा जो कर रहे हो, जिस भाव से तुम ये बातें प्रस्तुत कर रहे हो, इसे मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारे चित्त में भगवान के प्रति प्रेम है। अतः इसलिए वच्मी विचार ये च, मैं थोड़ा विचार करके सर्वसिद्धांत निष्पन्नम, सिद्धांत सिद्धांत की बात, सार की बात कहूंगा, जिसके प्राप्ति से संसार भयनाशनम, फिर तुम्हें संसार का भय नहीं होगा। मतलब ही किसका भय नहीं होगा? जन्म का भय नहीं होगा, और किसका? जन्म का भय नहीं, फिर मृत्यु का भय नहीं, और बूढ़ापे और व्याधि का भय नहीं। भज हुरे मन श्री नंद नंदन अभय चरण अरविंद रे, भगवान के चरण अरविंद कैसे हैं? अभय चरण। भगवान के चरण कैसे? अभय चरण। तो उनको जो भजता है, भज हुरे मन श्री नंद नंदन अभय चरण, अभय निर्भय बनेगा। तो ऐसे वचन, ऐसे भागवत के वचन के श्रवण से भय नहीं रहेगा। भगवत भावना, भगवान साथ में रहेंगे। जो इस भागवत के सिद्धांत को प्राप्त किया हुआ है, मतलब भगवान को प्राप्त किया हुआ है, भगवान के साथ ही जो है, इसको किसी का भय है? कोई डरा सकता है उसको? मानो भगवान ही उसके क्या बने हैं? अंगरक्षक बने हैं, बॉडीगार्ड। जैसे बालक के लिए, जब तक मम्मी पास में है तो बच्चे का लगा डर का कोई कारण नहीं। मम्मी है ना, बस तो समय समय पर देखता है, मम्मी है ओके खेलेगा, मम्मी अ है कोई चिंता नहीं। तो छोटे बालक के लिए मम्मी इज लाइक अ गॉड। मम्मी क्या है? मम्मी उसकी देवी है या ईश्वरी है, परमेश्वरी है, परमेश्वर है छोटे बालक के लिए। छोटा बालक से मेरी मम्मी क्या नहीं कर सकती, हर बात कर सकती है। मानो मेरी मम्मी क्या छड़ा ऐश्वर्य पूर्ण है। छड़ा बालक सोचे मेरी मम्मी आ मेरी मम्मी, इसको किसी बात का भय नहीं होता। तो जैसे इस उस बालक की वो मम्मी होती, तो हम सभी की मम्मी कौन है? हम सबकी मम्मी कौन है? भगवान है। मिठू माधा लेकुर वाला विठोबा कहिए या मिठू माई, मिठू आई, मिठू आई, मिठुस मिठाई, सब कुछ विठोबा ही है। सब कुछ मसोबा नहीं है। मसोबा का भी जो बा है वो विठोबा, सर्व कारण कारण, वो अगर पास में है तो फिर चिंता किस बात की। तो वैसे जीव निर्भय तो तब बन सकता है जब वो महसूस करेगा कि भगवान मेरे पास में है। ऐसा अनुभव साक्षात्कार दिला सकता है श्रीमद् भागवत जो साधन है, नहीं तो सुखदेव गोस्वामी जैसे द्वितीय स्कंद में मैं अपना प्रवचन शुरू करेंगे, द्वितीय स्कंद में सुखदेव गोस्वामी वो कहते देहापत्य कलत्रादिषु असत्सैनेषु असत्स्वपि। नहीं तो इस संसार में हम लोग तो कईयों को अपने अंग रक्षक बनाया है, इर्द गिर्द खड़े किए हुए, एक तो अपना देह में ओ मेरा बलवान, मैं बलवान तो हूं, फिर मुझे भय किस बात का। देह अपत्य, हमारे अपत्य पुत्र पुत्री तो है कितनी सारी है, देह कलत्रादिशु पत्नी भी है और भी रिश्तेदार है और वो है फलाना वो है, लेकिन ये जो सारा ये जो सेना है इनको सुखदेव गोस्वामी कहते ये असत सैनेश, ये झूठ मूठ की सेना है। ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते आप। तो विश्वास तो भगवान पर ही कर सकते हैं। तो जीव को जब अनुभव होगा, केवल ज्ञान ही नहीं श्रवण से, ये भक्ति से जैसे अधिक अधिक निकट पहुंचेगा भगवान के पास, या भगवान को निकट ले आएगा, अपने प्रेम से खींचेगा, स्नेह के पास से भगवान को पास ले आएगा, तो भगवान के निकट होने का जब अनुभव करता है जीव, तो फिर तभी वो निर्भय हो सकता है, वरना नहीं। नहीं तो फिर उसकी धोती पीली क्यों हो जाती, इंटेंस केयर यूनिट में या जहां भी आखिरी सांस आखिरी क्षण जब आता है तो क्या होता है, कईयों की धोती पीली हो जाती। आप कहावत सुने होंगे, समझ सकते हैं, टट्टी पेशाब दोनों पीले वर्ण का, तो पीली ये भय का तो लक्षण है। उसने जब डरावने यमदूतों को जब वो देखता है, नारायण नारायण, और वो भाग्यवान है उसने कथा अगर सुनी है तो मृत्यु के समय भी उसको नारायण का, उस अजामिल ने तो अपने पुत्र का ही नाम कहा नारायण नारायण, लेकिन भगवान ने वैसे पुकारने के लिए भी क्रेडिट दे दिया उसको, इस जामिल को उस स्नेह भरी वो पुकार नहीं थी भगवान को संबोधित की हुई, पुत्र का नाम रखा था नारायण, और जब आ गए डरावने यमदूत जब वहां पहुंचे तो कांपने लगा, रक्षा के लिए नारायण नारायण करके पुकारा तो नारायण के दूत आ गए और यमदूतों को उन्होंने वहां से भगा दिया। तो रक्षा की, लेकिन पूर्ण मुक्त उस वक्त नहीं हुए थे, तो उनकी आत्मा तो आधी बाहर आधी अंदर, जब यमदूत आए थे उन्होंने ऐसे फास फेंक दिया, ऐसा फेंक दिया, डरना नहीं है, ऐसा फेंक और खींच रहे थे। तो हम जो चित्र देखते हैं भागवत में, तो उसकी आधी आत्मा तो बाहर और आधी शरीर में, और यहाँ लड़ाई हो रही थी, यमदूत और विष्णु दूतों की। तो विष्णु दूतों ने रक्षा की अजामिल की, तो पुनः वो उस शरीर में प्रवेश किया। तो फिर उसी क्षण उसके बाद तो उसने घर से छुट्टी सीधे हरिद्वार गया और आगे साधना की, आगे भक्ति की, क्योंकि उस वक्त वो वैकुंठ योगी दुर्लभम, वो दुर्लभ वैकुंठ प्राप्ति का वो अधिकारी नहीं बन चुका था। मुक्त तो हो गया लेकिन पूरा भक्त नहीं बना था। तो और अवधि दी गई, तो हरिद्वार जाके उन्होंने और आगे भक्ति की और पुनः भगवान ने विष्णु दूतों को भेजा, एक वैकुंठ से यान लेके भेजा, जैसे तुकाराम के लिए देहू यान भेजा था, विमान भेजा था। तो अजा मिल गए, रीव रीव रीव, संसार भयनाशनम। तो सुत गोस्वामी कह रहे, मैं जो सर्व सिद्धांत संपन्न सार कहूंगा, जिसके श्रवण से और पर अमल करने से, उस ज्ञान विज्ञान से संसार भयनाशनम, संसार के भय से व्यक्ति मुक्त हो सकता है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेन भाषितम। सुत गोस्वामी कह रहे, शौनक जी ने कहा ही था कि जीवश्च आसुरम आगता, जीव कैसे आसुर आसुरी प्रवृत्ति के बन रहे हैं। हाँ हाँ, तुमने ठीक ही कहा। सुत गोस्वामी कह रहे हैं और एक उदाहरण से समझा रहे हैं कलयुग के जीवों की स्थिति या क्या हाल क्या दशा होती है। वो कह रहे काल व्याल, ये जो कली काल है उसकी तुलना सुत गोस्वामी एक व्याल या एक सर्प के साथ कर रहे हैं। मान लो एक बहुत बड़ा क्या है, सर्प है, कली काल व्याल, और उसने क्या कहे मुख, उसने मुख फैला हुआ है। ग्रास, ग्रास खाने के लिए, घास बनाने के लिए। कली काल व्याल ग्रास, और जब खाएगा वो कली जिस किसी को, तो उसका जो त्रास है, कली काल व्याल ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, बस भागवतम इसलिए सुनाया जा रहा है, या ये भी एक उद्देश्य है। कलिकाल जो सर्प के रूप में यहाँ के जीवों को मनुष्यों को घास ग्रास बना रहा है, उसके कारण जो यहाँ के जीव त्रसित है, ग्रसित त्रसित है, निर्नाश हेतवे उनको मुक्त करने के लिए, उनकी रक्षा के रक्षा हेतु ये श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेन भाषितम, ये श्रीमद् भागवत सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत के रूप में ये सुनाए हैं, समझाए हैं। और सुखदेव गोस्वामी जब कथा सुना ही रहे थे राजा परीक्षित को, मैं वही बैठा था, मैं नहीं, कौन कह रहे हैं, सुत गोस्वामी बैठे थे। सुखदेव गोस्वामी जब राजा परीक्षित को 7 दिवस कथा सुना रहे थे गंगा के तट पर, कहाँ पर, सुखताल, और कहाँ है सुखताल, हस्तिनापुर के पास, हस्तिनापुर के बाहर निकट ही, वहाँ जब कथा सुना रहे थे तो मैं वहाँ बैठा था, मैं श्रोता था, मैं श्रोता था। सुखदेव गोस्वामी तो मेरे गुरु महाराज, सुत गोस्वामी के गुरु सुखदेव गोस्वामी, तो अपने गुरु के मुखारविंद से, सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से सुनी हुई कथा सुत गोस्वामी यहाँ इस वन में, अरण्य में, नैमिषारण्य में एकत्रित हुए ऋषि मुनियों को वही भागवत कथा सुनाएंगे। जो श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य में से 6 अध्यायों में सुनाया है, सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्यः श्रवण मात्रेन हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। सदा सेव्या, श्रवण करो, श्रवण करो, किसका श्रवण करो, श्रीमद्भागवत कथा का श्रवण करो, श्रीमद्भागवती कथा। यस्यः श्रवण मात्रेन, जिस कथा के श्रवण मात्र से, श्रवण से होगा क्या, हरिश्चित्तम समाश्रयित, हरि उसके चित्त में बैठेंगे, प्रकट होंगे। जिसने भागवत कथा का श्रवण किया उसके चित्त में, उसके मन में बैठ जाएंगे, प्रभु बैठेंगे। ऐसे व्यक्ति की, व्यक्ति के चित्त की चोरी करेंगे प्रभु। प्रभु कैसे है, चित्त चोर है। तो गोपियों के वस्त्र तो उन्होंने चोरी भी किए थे और फिर कुछ समय के बाद लौटा भी दिए और वहां से निकल भी गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने क्या किया, ऐसी मुस्कान उनके चेहरे पर थी, जिस दृष्टि से देखा उन्होंने गोपियों को, और गोपियों ने कृष्ण को उनकी ओर देखते हुए देखा। आप समझ रहे हैं, आप देख रहे हो क्या क्या हो रहा है। तो भगवान ने क्या किया, जाते जाते उनका चित्त ही चोरी किया। तो बेचारी सदैव क्या करती रही, उसी का चिंतन करती रही, जिसने चित्त को, चित्त का चोरी किया। हम भी प्रार्थना करते हैं हमारे चित्त के भी प्रभु चोरी करें। दाई गौर प्रेम आनंदे हरि हरि बोल।